आज है 4 अक्टूबर दिन बुधवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अर्थनीति का विरोध करने वालों को कड़ा जवाब दिया।
कुछ लोगों को निराशा फैलाने में बड़ा आनंद आता है, अद्भुत।
स्पेन के अलगाववादी नेता पुजमोन ने कहा कुछ ही दिन में कैटलोनिया आजाद हो जाएगा। पाकिस्तान के हिंदू क्यों स्वीकार कर रहे हैं सिख धर्म?
यहाँ 1100 जो है वो सरदार बन गए हैं, जो गरीब लोग थे जिनको कोई पूछता नहीं था, जिनको हमारे हिंदू भाई जो है गिलास में पानी नहीं पिलाते।
और एक खास रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के बीमार अस्पतालों पर।
मैं सोचा था अपने बच्चे अच्छे से लून डालेंगे, बच्चे को अपने सही रखेंगे, लेकिन मेरा बच्चा ही नहीं रहा था, मैं कभी नहीं सोचता।
ये सब विश्व समाचारों के बाद।
बीबीसी समाचार, हरिताकांत पाल से। अर्थव्यवस्था के हालात पर चौतरफा हमलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में सफाई देते हुए कहा कि जीडीपी में गिरावट पहली बार नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि देश में मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो देश की प्रतिष्ठा और ईमानदार सामाजिक संरचना को कमजोर करते रहने का काम करते हैं। नोटबंदी को सफल बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि काले धन के खिलाफ स्वच्छता अभियान चलाया गया और ये एकदम सफल रहा है। कुछ ही दिन पहले पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने एक अंग्रेजी अखबार में लेख लिखकर मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना की थी। इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा।
और इन्होंने जीएसटी को समझा नहीं है और गलत जीएसटी लागू कर दी। हर छोटा दुकानदार, छोटे बिजनेस वाले, मीडियम साइज बिजनेस वाले रो रहे हैं और लाखों के बिजनेस बंद हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है।
ये थे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। गुजरात में मूछें रखने वाले दलित युवकों की पिटाई के मामलों के सामने आने के बाद दलित समुदाय के युवकों ने एक रैली आयोजित करने का फैसला किया है। पिछले हफ्ते एक दलित युवक ने पुलिस में शिकायत की थी कि उसे मूछें रखने के कारण ऊंची जाति के कुछ लोगों ने पीटा था। वहीं गुजरात में मंगलवार को एक और दलित युवक पर चाकू से हमला होने की भी खबर सामने आई थी। सोशल मीडिया पर मूछों की तस्वीरें पोस्ट कर इन हमलों का विरोध जताने का सिलसिला भी जारी है। रसायन शास्त्र में इस साल का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। माइक्रोस्कोप से अणुओं के अध्ययन के लिए इन वैज्ञानिकों ने जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया उसे क्रांतिकारी माना जा रहा है। जाक रिबोशे, योएकम फ्रैंक और रिचर्ड हेंडरसन को क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी नाम की एक तकनीक विकसित करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। इस तकनीक में जैविक अणुओं को चमाकर इलेक्ट्रॉन बीम से ऐसी प्रक्रियाएं देखी जा सकती हैं जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई हैं। नोबेल पुरस्कार कमेटी ने कहा है कि इस तकनीक ने जैविक रासायनिक प्रक्रियाओं की समझ को आगे बढ़ाया है और इससे ब्राजील में नवजात शिशुओं को प्रभावित करने वाले जीका वायरस के बारे में समझ हासिल हो पाई है। रसायन शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार कमेटी की अध्यक्ष सारा स्नोरूप लिंसे ने कहा, जल्द ही कोई राज नहीं रह जाएगा। हम अब जैविक अणुओं के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं और शरीर में बहने वाले सभी द्रवों के हर बूंद की जानकारी हमारे पास होगी। हम समझ सकते हैं कि ये कैसे बने और ये कैसे काम करते हैं। ये थे सारा स्नोरूप लिंसे के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल के प्रवक्ता ने स्पेन और कैटालोनिया की सरकार के बीच संभावित मध्यस्थता की कोशिशों में मर्केल के शामिल होने की रिपोर्टों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह स्पेन का अंदरूनी मामला है, लेकिन जर्मनी इसे करीब से देख रहा है। कैटालोनिया की संसद में आजादी के लिए कराए गए जनमत संग्रह के नतीजों पर चर्चा के लिए सोमवार को बैठक होगी। माना जा रहा है कि कैटलन सांसद कैटालोनिया की आजादी की एक तरफा घोषणा कर सकती है। वहीं यूरोपीय आयोग ने भी स्पेन और कैटालोनिया को इस संकट के समाधान को बातचीत से निकालने की अपील की है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर। मैं हूं राजेश जोशी। आप इस कार्यक्रम को फेसबुक और अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी ही देर पहले अपने विरोधियों, अपने आर्थिक फैसलों की आलोचना करने वालों को कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने ऐसे लोगों की तुलना महाभारत के किरदार शल्य से की है, जिनकी आदत हर काम में मीन मेख निकालना था। आप जानते ही हैं कि कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखकर मोदी के आर्थिक फैसलों की कड़ी आलोचना की थी और वित्त मंत्री अरुण जेटली को आड़े हाथों लिया था। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी उस हमले के बाद ही अपना बचाव करने के लिए बोले। उन्होंने नोटबंदी के फैसले को उचित ठहराया।
ये सरकार के अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि आज देश की अर्थव्यवस्था कम कैश के साथ चल रही है। डिमोनेटाइजेशन के बाद कैश टू जीडीपी रेशियो अब 9% आ गया है, 9% आ गया है। 8 नवंबर इतिहास में भ्रष्टाचार मुक्ति के अभियान का प्रारंभ दिवस माना जाएगा 8 नवंबर।
प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर वो लोग थे जो उनकी आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना कर रहे हैं।
कुछ लोगों को निराशा फैलाने में बड़ा आनंद आता है, अद्भुत आनंद। उनको रात को बहुत अच्छी नींद आती है और ऐसे लोगों के लिए आजकल एक क्वार्टर की ग्रोथ कम होना जैसे सबसे बड़ा खुराक मिल गया है।
हमारे साथी दिनेश उप्रेती प्रधानमंत्री के भाषण पर नजर रखे हुए थे और इस वक्त यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। दिनेश, बताइए प्रधानमंत्री का मुख्य स्वर क्या था? हालांकि जिस तरह से उन्होंने बात कही वो तो हमने सुन ली, और क्या क्या कहा?
जी राजेश जी, जैसे कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में विदेशों में काला धन जमा करने वाली या नोटबंदी या GST की सारी बातें की, लेकिन उनका जो आज जो मुख्य बात थी वो NDA सरकार के पिछले 3 साल और मौजूदा सरकार, मतलब पिछली सरकार UPA सरकार के पिछली सरकार के जो कामकाज है उनकी तुलना पर उनका जोर था। जैसे कि उन्होंने कहा कि 1992 से लेके 2004 तक जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं उससे ज़्यादा उनकी सरकार ने अब तक रिफॉर्म्स किए हैं। विदेशी मुद्रा भंडार $402 अरब के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया है। उन्होंने ये कहा कि हवाई जहाज, पैसेंजर कार, शहरी क्षेत्रों में जो डिमांड है वो बढ़ गई है। 50% से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों पर सड़क निर्माण हुआ है। 1100 किलोमीटर रेल का निर्माण जो UPA की सरकार में हुआ था, अब उनकी सरकार ने पिछले 3 साल में 2100 किलोमीटर का सड़क निर्माण किया है। 1300 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण जो UPA सरकार के कार्यकाल में हुआ था वो उनकी सरकार ने 2600 किलोमीटर में किया है। और पिछले 3 साल में सेक्टर की ग्रोथ में 87 आर्थिक सुधार उन्होंने किए हैं।
87 आर्थिक सुधार किए हैं।
मेन जो उनका फोकस था, उनका कहना था कि कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, बिजली के उपकरण ऐसे सेक्टर हैं जहां 1992 के बाद से जितना निवेश आया है अब तक उसका 50% से ज़्यादा उनकी सरकार ने पिछले 3 साल में किया है।
और उन्होंने व्यापारियों को भी ये भरोसा दिलाया है कि उनके पुराने खातों की जाँच नहीं की जाएगी। जो कुछ व्यापारियों में डर है कि इनकम टैक्स का कहीं ऐसा ना हो कि बोझ उन पर पड़े, ये भी उन्होंने कहा।
उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा कि GST के मामले में हमारी सरकार किसी चीज़ से बंधी भी नहीं है, हम जो रिफॉर्म्स होंगे इसमें वो आगे भी करते रहेंगे।
जी हाँ, ये प्रधानमंत्री का भाषण अब से कुछ ही देर पहले प्रसारित हुआ था, इसलिए इसके कुछ अंश ही हम आपको सुनवा पा रहे हैं। कल सुबह के अपने कार्यक्रम में हम इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट सुनाएंगे। फिलहाल कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। और एक अंतर्राष्ट्रीय विषय, क्या स्पेन टूटने से बच पाएगा? रविवार को पूर्वी स्पेन के कैटालोनिया को अलग करने के लिए किए गए मतदान के बाद ये सवाल और महत्वपूर्ण हो गया है। कैटालोनिया के अलगाववादी नेता कार्लेस पुज्जेमोन ने BBC से खास बातचीत में कहा कि उनका क्षेत्र कुछ ही दिन के भीतर स्पेन से आज़ाद हो जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने कैटालोनिया पर कब्जा करने या उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। कैटालोनिया के संसद में इस मामले पर आज चर्चा होनी है। BBC संवाददाताओं की रिपोर्टों का सार सुनिए गुरप्रीत कौर से।
रविवार को कैटालोनिया में स्पेन से अलग होने के लिए जनमत संग्रह हुआ था, जिसके दौरान पुलिस ने मतदाताओं पर लाठी चार्ज कर उन्हें तितर बितर करने की कोशिश की। अलगाववादी नेता कार्लेस पुजडेमोन ने बीबीसी से बातचीत में कहा है कि सरकार गलती पर गलती करती जा रही है।
उनकी हर गलती के साथ हमारा जन समर्थन बढ़ता गया, क्योंकि कैटालोनिया में एक बड़ी आबादी इन हालात को स्वीकार नहीं करती। उन्होंने हमारे आर्थिक संसाधनों पर कब्जा किया और मुझे और हमारी सरकार के दूसरे सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई जिसने सब कुछ बदल दिया।
ये थे कार्लेस पुजडेमोन के शब्द। पर सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य मैनुएल डे ला रोचा ने कहा है कि पुजडेमोन की एक तरफा आजादी की घोषणा गलत साबित होगी। उन्होंने पुजडेमोन को बातचीत का रास्ता अपनाने की सलाह दी।
पुजडेमोन एक तरफा बातचीत का दावा नहीं कर सकते क्योंकि वो समझौते को तैयार नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है कि स्पेन के प्रधानमंत्री मारियानो रखाय भी बातचीत के लायक नहीं है क्योंकि वो हमेशा कैटालोनिया की मांगों को खारिज करते रहे हैं। लेकिन शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत ही आखिरी रास्ता है। सिर्फ इससे ही देश के टुकड़े होने से बच सकते हैं।
ये थे मैनुएल डे ला रोचा के शब्द। इससे पहले स्पेन के राजा फेलिपे ने राष्ट्र के नाम प्रसारित संदेश में कैटालोनिया के अधिकारियों पर गैर कानूनी तरीके से जनमत संग्रह कराने का आरोप लगाया। किंग फेलिपे ने कहा कि कानून का सम्मान किए बगैर शांति और आजादी मिलना नामुमकिन है।
कैटालोनिया के कई अधिकारी जानबूझकर बार बार संविधान और कानून का उल्लंघन करते हैं। अपने फैसले से वो कानूनी रूप से स्वीकृत मानदंडों को तोड़ते हैं। उन्होंने सरकार और सत्ता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है, जो कि कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता।
ये थे किंग फेलिपे के शब्द। स्पेन के कई लोग कैटालोनिया की आजादी के समर्थन में हैं। किंग फेलिपे के रवैये से स्पेन के लोगों में भी नाराजगी है।
राजा ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा। अगर वो पूरे स्पेन के लोगों के राजा होते तो वो कुछ कहते। मैं गणतंत्रवादी हूँ। कैटालोनिया की आजादी में मेरी दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि इससे हम एक गणतंत्र बनाएंगे, न कि राजतंत्र, जो कि पुरानी बासी और गैर जनतांत्रिक व्यवस्था है।
ये थे बार्सिलोना की एक महिला माटिल्डा के शब्द। इस बीच स्पेन की हाईकोर्ट ने कहा है कि कैटलान के कुछ बड़े नेताओं के खिलाफ अलगाववाद और सरकार के खिलाफ बगावत भड़काने के आरोपों की जांच शुरू की जा चुकी है। रविवार को आजादी के पक्ष में हुए जनमत संग्रह को सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर दिया था। इसके बाद स्पेन के एक कोर्ट ने भी मतदान रद्द करने का आदेश दिया। फिर भी मतदान हुआ। इस दौरान मतदाताओं और स्पेन की पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुई, जिसमें करीब 900 लोग घायल हो गए। इसके विरोध में आज हजारों लोग सड़कों पर उतरे और स्पेन की पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया।
ये रिपोर्ट आपने सुनी गुरप्रीत कौर से। दिनभर कार्यक्रम आप बीबीसी हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। आइए अब लौटते हैं हिंदुस्तान की ओर।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
सबसे पहले बात केरल की, जहां भारतीय जनता पार्टी ने मार्क्सवादी पार्टी के गढ़ में घनघोर राजनीतिक अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी ने सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में चल रही सरकार के खिलाफ जनरक्षण यात्रा शुरू की है। यात्रा के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पदयात्रा का नेतृत्व किया। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कल इस यात्रा की शुरुआत की और मुख्यमंत्री पिनेरी विजयन को हत्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
केरला में बीजेपी हमेशा से हाशिए पर रही, मगर जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है तब से पार्टी ने सीपीएम पर लाल आतंक फैलाने का आरोप तेज कर दिया है और अब उन्होंने जिहादी लाल आतंक की बात शुरू कर दी है, जिससे इस्लामी संगठनों और कम्युनिस्टों पर एक साथ निशाना साधा जा सके। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह हर दूसरे तीसरे महीने केरला पहुँचते हैं। इस बार शाह ने 15 दिन के जनरक्षण यात्रा की शुरुआत की है। इस अभियान का नेतृत्व करने के लिए दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आमंत्रित किया गया। योगी आदित्यनाथ ने बीबीसी को बताया कि वो उत्तर प्रदेश से इतनी दूर केरला क्यों पहुंचे।
हम लोग का ये मानना है कि लोकतंत्र में चुनी गई सरकारें पूरे समाज और पूरे व्यवस्था की सुरक्षा के लिए जवाबदेह होनी चाहिए। लोकतंत्र सहमति और असहमति के बीच समन्वय का नाम है, लोकतंत्र संवाद का नाम है, लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए।
लेकिन ये बात भी सही है कि इस राजनीति खून खराबा में सिर्फ आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं मरे हैं, बल्कि उतने ही सीपीएम कार्यकर्ताओं की हत्या करने का इल्जाम आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर भी लगा है। योगी आदित्यनाथ ने खून खराबे के लिए सीपीएम को जिम्मेदार ठहराया।
सत्ता में सीपीएम है, बीजेपी या आरएसएस नहीं। 17 राज्यों में सरकार और केंद्र में सरकार होने के बावजूद कोई एक सिंगल आरोप भी कहीं नहीं लग सकता कि राजनीतिक लाभ के लिए हम लोगों ने किसी प्रकार की हिंसा को प्रश्रय दिया हो या राजनीतिक हिंसा हमारे राज्यों में हुई हो।
लेकिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के निशाने पर केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन रहे हैं। उसकी वजह ये भी है कि यात्रा कन्नूर जिले से शुरू हुई है, जहां सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। एक और वजह यह भी है कि मुख्यमंत्री विजयन कन्नूर जिले के ही निवासी हैं। अमित शाह ने एक जनसभा में सीधे मुख्यमंत्री की आलोचना की।
मैं कहना चाहता हूं, ये सारी हत्याओं की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री विजयन की।
सीपीएम ने इस यात्रा की निंदा की है और कहा है कि यात्रा से आरएसएस बीजेपी हिंसा भड़काने की कोशिश कर रही है। सीपीएम के संसद सदस्य एमबी राजेश,
टुडे मॉर्निंग आई रेड इन द न्यूज़पेपर्स दैट वन बीएसपी लीडर हैज बीन शॉट डेड इन ड्यूटी।
पिछले 2-3 महीनों से मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आरएसएस बीजेपी नेताओं से बातचीत की है और पार्टी कार्यकर्ताओं को स्पष्ट तौर से कहा गया है कि एक शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाना चाहिए। अमित शाह तो ऐसे लग रहे हैं कि हिंसा नहीं होने के कारण वो परेशान लग रहे हैं। ये थे एमबी राजेश के शब्द। केरला में 60 सालों से सिर्फ वाम मोर्चा या कांग्रेस मोर्चा सत्ता में आते रहे हैं। पिछले विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को करीब 10% वोट मिले हैं और उसका मानना है कि अगर वो ज्यादा जोर लगाएं तो शायद वो कांग्रेस की जगह ले सकती है। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
और केरल के बाद उत्तर प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपने शहर गोरखपुर के एक अस्पताल में अगस्त के महीने में ऑक्सीजन की सप्लाई न हो पाने के कारण बड़ी संख्या में छोटे बच्चों की मौत हो गई थी। तभी से उत्तर प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की बदइंतजामी की खबरें सामने आने लगी थीं। बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ अस्पतालों का दौरा किया और भेजी ये रिपोर्ट, जो शुरू होती है फर्रुखाबाद के एक अस्पताल से।
फर्रुखाबाद के इसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कथित कमी से एक महीने के भीतर 49 बच्चों की मौत हो गई थी। मैं एक ऐसी ही माँ से मिलने पहुंचा जिन्होंने अपना बच्चा इसी अस्पताल में खो दिया था।
मैं सोचा था अपने बच्चे अच्छे सलून डालेंगे, अच्छा पढ़ाए लिखाएंगे, अच्छे रखेंगे, हम चाहे फटे नुचे कपड़ा पहने के लिए बच्चे को अपने सही रखेंगे, लेकिन मेरा बच्चा ही नहीं रहा था। मैं कभी नहीं सोचता हूँ कैसे बात, तुम खाली सोचो बस मेरे दिल में जाया।
मेरे पास इस माँ के आंसुओं से उठे सवालों का कोई जवाब नहीं था। ये आगरा का ट्रांस यमुना इलाका है, जहाँ सड़क किनारे 2 किलोमीटर के दायरे में 75 से ज्यादा निजी अस्पताल हैं। मशरूम की तरह उगाए इन अस्पतालों में इलाज कराने वाले ज्यादातर लोग आसपास के गांव से आते हैं। ऐसे ही एक अस्पताल के बाहर बैठे एक बुजुर्ग से मेरी मुलाकात हुई।
मेरा नाम राम शाह है।
राम शाह जी कहाँ से आए हैं?
बवान से।
कैसे बैठे हैं इधर?
यहाँ बैठे हम, लड़की का है और का उसके बच्चा होना रहो, यहाँ से प्राइवेट आए हैं, क्या करें।
अच्छा, कितना पैसा खर्च हुआ अभी तक आपका?
पैसा है वो कोई 70-75 हज़ार रुपये
खर्च हो गए।
हाँ,
75 हज़ार तो बड़े भारी पड़ गए होंगे।
अरे भारी पड़ जाएगा, कोई बात नहीं,
बचाना है आदमी, बचाना तो खेत तो बेचना पड़ेगा, जान बचानी आदमी की।
रामसा की बहू दुर्गेश को एक के बाद एक 3 निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया था, जिनका बिल चुकाने के लिए रामसा को अपनी जमीन बेचनी पड़ी। दुर्गेश की माँ मीरा देवी ने मुझे बताया कि अस्पताल ने 15,000 रुपए में डिलीवरी का ठेका लिया था।
आशा लेके आई थी यहाँ पे प्रार्थना हॉस्पिटल में, मैंने भर्ती करवाया, उसे अपने आप ही लेके आई सरकारी हॉस्पिटल से खनौली से, और उसने 14,000 का ठेका दिलवाया। यहाँ से डील करा के अपनी भर्ती कराए के आशा अपने घर चली गई। नहीं, डॉक्टर साहब ने अच्छी तरह इसका इलाज कोई भी नहीं ट्रीटमेंट किया है, उन्हें कह दिया कि 5 दिन का कोर्स पूरा हो गया।
मैंने जब दुर्गेश का ठेके पर इलाज किए जाने की जानकारी आगरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुकेश कुमार वत्स को दी, तो वो अपने दल बल के साथ इन अस्पतालों की जाँच करने पहुँच गए।
अगर कोई इमरजेंसी होगी तो कौन देखेगा? एकदम इतने 5 मिनट में
ये भूपेंद्र डॉक्टर को बुलाओ और ये कृष्ण गोपाल शर्मा जी को बुलाओ, दोनों को बुलाओ।
चैतन्य नाम के इस अस्पताल में उन्हें कोई डॉक्टर मौजूद नहीं मिला।
इतनी अंधेरी लेकर चल रही है,
आपके पास नहीं देखा था।
लिखा हुआ सर, सीरियस पेशेंट में एक एक दिन में 10-10 जोड़ डलते हैं।
प्रार्थना अस्पताल जहां दुर्गेश का सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था, वहां इलाज से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। अधिकारियों ने इन दोनों अस्पतालों में मरीज भर्ती करने पर रोक लगा दी, लेकिन आगरा में ये अस्पताल नियमों को ताक पर रखकर कैसे चल रहे हैं? स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता शबी कहते हैं,
इस एरिया में जो CMO आए, उन्होंने छापामारी अभियान किया। रात को हॉस्पिटल में सील लगती है, सुबह हॉस्पिटल की सील खुल जाती है। आज आप देख ले, एक एक डॉक्टर 20-20 हॉस्पिटलों में अपनी सेवाएं दे रहा है।
आगरा में प्राइवेट अस्पतालों का जायजा लेने के बाद मैं फरुखाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राम मनोहर लोहिया पहुंचा। रात के करीब 9 बजे जब इमरजेंसी में तैनात एकमात्र डॉक्टर दुर्घटना में घायल मरीजों को देखने में व्यस्त थे, तब एक वार्ड बॉय शराब पीकर हंगामा करने लगा। मैं महिला अस्पताल की ओर बढ़ा तो बिजली चली गई। प्रसूता वार्ड में भर्ती संगीता ने अपने लिए बैटरी चलित पंखा लगाया हुआ है।
गर्मी लगती है सर, क्या करूं, परेशान होना पड़ता है, टाके लगे हुए, पसीना आ जाएगा, दिक्कत होगी, तो इसलिए है। बिजली रुकती है नहीं, आती जाती है, ऐसे रात भर ड्रामा करती है।
जब मशीन जगह सिखाई वाली खराब आज कितने सिखाई नाई।
अभी मैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल के OPD में हूं, जहां सैकड़ों लोग लाइन में लगे हैं। करीब 20 लाख की आबादी वाले इस जिले का ये सबसे बड़ा अस्पताल है और यहां रोजाना 2000 मरीज आते हैं। लेकिन क्या इन मरीजों को देखने के लिए डॉक्टर हैं? कमरा नंबर 29 जहां हड्डी रोग विशेषज्ञ बैठते हैं, वो खाली है और उसके बाहर मरीजों की लाइन लगी है
एक्सरे कराने के लिए है। कहने लगे 29-30 नंबर में चली जाओ। अब यहाँ पे डॉक्टर नहीं, 30 नंबर बंद है। हमें तो काफी देर होगी, इतनी देर लाइन में लगे रहे, पर्चा बनवाने के लिए इतनी देर वहाँ लाइन में लगे रहे।
राम मनोहर लोहिया अस्पताल फरुखाबाद की लाइफलाइन भले हो, लेकिन यहाँ डॉक्टरों की भारी कमी है। इस बारे में अस्पताल के अधीक्षक BB पुष्कर कहते हैं,
वैसे तो 29 की डॉक्टर्स की आवश्यकता है, लेकिन हमारे पास इस समय 14 डॉक्टर हैं। जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं, वो ज़्यादा इधर उधर के कामों में ज़्यादा चली वो एंगेज रहते हैं अपने स्पेशलिटी के साथ साथ। 14 डॉक्टर कहने को तो 14 डॉक्टर हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो है OPD में वो 4-5 ही डॉक्टर हमारे बैठ पाते हैं।
मेरे मन में सवाल बार बार ज़रूर उठ रहा था कि जब सरकार को पता है कि अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी है, तो फिर इस कमी को दूर क्यों नहीं किया जा रहा है।
दिलनवाज पाशा की विशेष रिपोर्ट। और भारत के बाद एक नजर पाकिस्तान पर।
खबर सच है अगर BBC पर है।
आपने कई बार खबरें सुनी होंगी कि पाकिस्तान में हिंदुओं ने इस्लाम कबूल कर लिया है। कई बार हिंदू समुदाय के नेता भी जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप लगाते हैं, पर सिंध प्रांत में दलित समुदाय के कई हिंदू अब इस्लाम की बजाय सिख धर्म अपना रहे हैं। लीजिए सुनिए कराची से रियाज सुहेल की रिपोर्ट आदर्श राठौर की आवाज में।
सच्चे साहेबा क्या नहीं करते।
कृष्ण सिंह पहले श्री राम के भक्त थे, मगर कुछ साल पहले उन्होंने धर्म बदल लिया और सिख बन गए। वो बागड़ी कबीले से संबंध रखते थे।
अपने सतगुर के बलिहार।
जब हमें थोड़ा सी पता हुआ कि सिख के बारे में हम जानना चाहे, तो हमें लाहौर गए। वहाँ से बाहर के सिखाते हैं, मलेशिया, सिंगापुर, इंग्लैंड, जो इंडिया हैं, भारतीय भी कहते हैं, वहाँ के सिखाए, तो हमें बहुत प्यार हो गया सिखों से। फिर लोग सरदार को देख के बहुत खुश होते हैं। सरदार जी लस्सी पी लो, सरदार जी जो कुछ ये खाओ, सरदार जी बात करो मुझसे, सरदार जी जो कुछ भी, बड़ा बहुत प्यार होता है। इनकी वजह से फिर हम सिख बन गए।
कराची के बाहरी इलाके में बसे इस गांव की ज्यादातर आबादी हिंदू थी, मगर अब यहां कृष्ण सिंह की तरह धर्म बदलने वाले 40 सिख परिवार रहते हैं। इस गांव में स्थानीय लोगों और अंतर्राष्ट्रीय सिख संगठनों के सहयोग से बड़ा गुरुद्वारा बनाया जा रहा है। इस गुरुद्वारे में 500 लोगों के लिए जगह होगी। पाकिस्तान बनने से पहले कराची में करीब आधा दर्जन गुरुद्वारे होते थे। अधिकतर सिख आबादी भारत चली गई और वे वीरान हो गए, मगर अब हालात बदल रहे हैं। कुछ सिख नेता मानते हैं कि पुराने गुरुद्वारों को अगर फिर से खोल दिया जाए और धार्मिक आजादी मिले तो सिखों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। श्री गुरु नानक सत्संग सभा के अध्यक्ष एडवोकेट सरदार हीरा सिंह ने कहा,
गुरु ग्रंथ साहब से मैं पढ़ता हूँ, उसकी ट्रांसलेशन करता हूँ, उसको बताता हूँ कि भाई ये गुरु साहब का हुक्म है। इसी तरीके से करते करते यहाँ 1100 जो है वो सरदार बन गए हैं, जो गरीब लोग थे जिनको कोई पूछता नहीं था, जिनको हमारे हिंदू भाई जो है गिलास में पानी नहीं पिलाते।
सिंध के हिंदू समुदाय में ज्यादातर लोग गुरु नानक के भी भक्त हैं, ज्यादातर मंदिरों में गुरु ग्रंथ साहिब भी हैं, मगर अब सिख समुदाय अपने अलग गुरुद्वारे बना रहा है जहां किसी और की पूजा नहीं होती। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की नेता मंगला शर्मा कहती हैं,
वही कम्युनिटी ज्यादा कन्वर्ट हुई जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, वो फिर उनके साथ वो जब हो गई तो उससे ये कि पॉलिटिकल फ़ायदा भी लिया गया। तो इंटरनेशनली सिखों का ये एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, उनकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी है, तो उस नेटवर्किंग से जब ये लोग आने लगे तो उनके फंडिंग चीज़ें सारी होने लगी तो वो लोग कन्वर्ट हुए।
ग्लोबल सिख समुदाय पाकिस्तान को दोस्त समझता है, इसी वजह से यहाँ पर सिख समुदाय की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्वीकार्यता ज्यादा है।
कराची से रियाज सुहेल की रिपोर्ट आपने सुनी आदर्श राठौर की आवाज में। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर लिखिएगा। हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। और आगे बढ़ने से पहले एक नज़र bbchindi.com के पहले पन्ने पर, जहां सबसे ऊपर खबर है, यहां 40 सेकंड में मरीज को निपटा देते हैं डॉक्टर। ये दिलनवाज पाशा की रिपोर्ट है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले सुनी। और अब वक्त है खेल समाचारों का।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सानिया मिर्जा ने महिला डबल्स में अपनी पार्टनर चुआई पेंग के साथ डेमी शूर्स और एलिस मोर्टिस को 7-5, 6-2 से हराया। वहीं रोहन बोपन्ना ने उरुग्वे के अपने पार्टनर पाब्लो कुइवेस के साथ मिलकर गोंग माओझुइन और झेंग जे को 6-0, 6-4 से मार दी। टेनिस में ही एक अन्य भारतीय खिलाड़ी रामकुमार रामनाथन को कॉटन चैलेंजर्स के पहले राउंड में हारकर बाहर होना पड़ा। पांचवी वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी को अमेरिकी खिलाड़ी क्रिस्टियन हैरिस से शिकस्त झेलनी पड़ी। और अब बात क्रिकेट की। नवंबर में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली एश सीरीज से पहले स्टीव स्मिथ की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज जेम्स पैटिनसन पीठ में चोट के चलते एशेज में नहीं खेल पाएंगे। चोट की ही वजह से पैटिनसन पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलियाई टीम के बांग्लादेश दौरे से भी बाहर हो गए थे। माना जा रहा है कि चोट की वजह से वो लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहेंगे। 27 साल के पैटिनसन ने 17 टेस्ट मैचों में अब तक 70 विकेट हासिल किए हैं। और वहीं 6 अक्टूबर से भारत में अंडर 17 फीफा विश्व कप शुरू होने जा रहा है। कोच डी माटोस की अगुवाई में भारतीय टीम इस विश्व कप में मेजबान होते हुए सभी को अपने खेल से प्रभावित करना चाहेगी। भारत पहली बार किसी फीफा टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है। फुटबॉल एक्सपर्ट नोवी कपाड़िया कहते हैं,
काफी महत्वपूर्ण है कि देखो पूरी दुनिया की नज़र अब भारत पे होगा कि ये फुटबॉल भी एक शौक, लोगों को शौक है इस खेल का। और स्टेडियम अच्छे हो गए। अब ये है कि राष्ट्रमंडल खेल की तरह व्हाइट एलिफेंट ना रहे, इनका इस्तेमाल होए, क्योंकि सॉल्ट लेक स्टेडियम पे तो बहुत पैसा खर्च किया गया है और एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बना है। और भी जो 5 जगह है, कोची, गोवा, मुंबई, दिल्ली, गुवाहाटी, अच्छे स्टेडियम बने, प्रैक्टिस पिचेस बहुत अच्छे बने, वो एक खास बात है।
खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
खेल समाचारों के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर।
बीबीसी समाचार। अर्थव्यवस्था के हालात पर चौतरफा आलोचनाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जीडीपी में गिरावट पहली बार नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि देश में मुट्ठी भर लोग फैला रहे हैं निराशा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद पहली बार कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे। रसायन शास्त्र में इस साल का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। माइक्रोस्कोप से अणुओं के अध्ययन के लिए इन वैज्ञानिकों ने जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया उसे क्रांतिकारी माना जा रहा है। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल के प्रवक्ता ने स्पेन और कैटालोनिया की सरकारों के बीच संभावित मध्यस्थता की कोशिशों में मर्केल के शामिल होने की रिपोर्टों को खारिज कर दिया है। इराकी सेना ने कहा कि हवीजा शहर में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के नियंत्रण वाले दो इलाकों में इराकी सैनिक दस्ते प्रवेश कर चुके हैं। बीबीसी समाचार।
ये थे अब तक के मुख्य समाचार, और मुख्य समाचारों के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इसका तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने, और फेसबुक के जरिए कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया भूमिका राय ने। मैं राजेश जोशी सभी साथियों की ओर से आपसे अनुमति लेता हूं, कल सुबह 6:30 बजे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, शुभ रात्रि।